प्यारे साथियों नमस्कार। आज 25 नवंबर 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन पांच नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अर्जुन दाइमा जो बैतूल मध्य प्रदेश से हैं, अंकित सिंह आप भोपाल से हैं, भानु प्रताप सिंह आप मुखर्जी नगर दिल्ली से हैं, माला राम बारूपाल आप श्री गंगानगर राजस्थान से हैं और चंदन राम वर्मा आप भी श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। तो अर्जुन, अंकित, भानु प्रताप, मालाराम और चंदन, आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार के दिन मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं। तो सूचना यह है कि कल सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सैटरडे को आपको कुछ चीजें बकायदे वेबसाइट पर नॉलेज सेंटर में पढ़ने को मिलेंगी। उसमें एक है प्रेस क्लिपिंग्स, हमेशा की तरह आपको प्रेस क्लिपिंग्स अवेलेबल होंगी और प्रेस क्लिपिंग्स आपको देखनी ही चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। मित्रों, योजना और कुरुक्षेत्र के एक एक आर्टिकल, एक एक मतलब एक हिंदी एक इंग्लिश प्लस एक हिंदी एक इंग्लिश, टोटल चार आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, आर्टिकल के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वह हिंदी का आर्टिकल इंग्लिश में भी होता है और मुझे वो दोनों आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश सेम आर्टिकल है, वही हिंदी में है वही इंग्लिश में, या इंग्लिश का ट्रांसलेटेड हिंदी में है, तो मुझे वो टॉपिक और उसका जो कंटेंट है इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि मैं एक ही टॉपिक के दोनों भाषाओं में आर्टिकल उपलब्ध करा देता हूं। तो वह आपको अपने लैंग्वेज के हिसाब से चयन कर लेना है कि आप किस भाषा में अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आप इसे इस रूप में न लें कि मुझसे कोई गलती हुई है और मैंने इस तरीके से आर्टिकल प्रोवाइड कर दिए हैं। तो योजना और कुरुक्षेत्र के आपको दो दो यानी कि टोटल चार आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ ही वीकली क्वेश्चंस भी आपको एक दिया जाएगा जिसे आप सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब है उसका उत्तर लिखें, लेकिन बिना अच्छी तैयारी के उत्तर न लिखें। आप इस तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें, चीजें जुटाएं, सोचें, पॉइंट बनाएं और फिर लिखना शुरू करें कि यह मेरा बेस्ट आंसर है, मतलब अभी तक जो मेरी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के आधार पर यह मेरा बेस्ट आंसर है, वो कोशिश आपकी होनी चाहिए। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लीज जब आप अपने उत्तर लिखें तो लिखने के बाद आप एक काम और कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मैंने कभी आपसे चर्चा की है, लेकिन आज मैं करना चाहूंगा और वह यह कि प्लीज थोड़े से लैंग्वेज पर भी काम कीजिए। लैंग्वेज पर काम करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा, एक वाक्य लिखा, आप देखिए, या एक पैरा लिखा, आप देखिए कि क्या आप इसे और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, चाहे शब्दों को बदल करके या वाक्यों को छोटा बड़ा करके, और यहां तक कि एडिटिंग भी कीजिए ना कि कहां आप अपने आप को दोहरा रहे हैं, कहां तीन वाक्य बन गए हैं एक ही कंटेंट के लिए, एक ही तथ्य के लिए तीन वाक्य बन गए हैं, जबकि उन तीन वाक्यों को एक वाक्य में लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम होना, आपको मालूम है ही कि 200 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। तो ये सारे के सारे वो अभ्यास हैं जो आपको मजबूत बनाएंगे। मित्रों, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये मत समझिए कि वो केवल जब खेलते हैं तभी खेलते हैं, जब मैच नहीं खेलते रहते हैं उस समय भी वो उसी तरह से अभ्यास करते रहते हैं जैसे कि अभी वो खेल रहे हों। तो ये अभ्यास मुझे लगता है कि आप लोगों को भी करना चाहिए और यही अभ्यास आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा। और फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा, तो वो अपना उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर और इसकी शुरुआत करते हैं हम AIR न्यूज से। मित्रों, कल के AIR न्यूज में जो बड़ी खबरें हैं, मतलब वो दो हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि नोटबंदी का मामला, तो उस पर जो खबर है वो लगातार चलती चली जा रही है और ये चलेगी, एक लंबी खबर बनेगी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है और चूंकि इससे बहुत सी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। अभी तो हम केवल एक सामान्य समस्याओं को देख रहे हैं जो लोगों की तकलीफों से जुड़ी हुई है, यानी कि किसी की शादी के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, किसानों को खाद और बीज के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा, इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में है, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके अर्थव्यवस्था में दूसरी तरह की परेशानियां पैदा होंगी ही। तो वो जो दूसरी तरह की परेशानियां जब पैदा होंगी, तो सवाल ही नहीं है कि नोटबंदी का जो समाचार है, आप कह लीजिए कि ये खत्म हो जाएगा, तो ये लंबा चलने वाला सिलसिला है। आप तो बस, जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं, इसको वाच करते जाइए और इसके माध्यम से इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है आपका, उसकी तैयारी करते जाएं, बस दैट्स ऑल। ये अगर आपने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व का मतलब है नहीं कि केवल अखबार पढ़ लिया और ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने का मेरा मतलब है कि उसको एब्जॉर्ब भी कीजिए, यानी कि जो तथ्य आप सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर समझने की कोशिश कीजिए, चाहे आप किताबों के जरिए समझिए, चाहे आप अपने फ्रेंड से समझिए, टीचर से समझिए, लेकिन उस तथ्य को समझिए, तब जाकर के वो ऑब्जर्व करने से जो एब्जॉर्ब होगा वह बात बन पाएगी। अदरवाइज तो फिर ऐसे ही है कि आप तट पर बैठ करके और बहते हुए पानी, नदी में बहते हुए पानी को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो एक घंटे से पानी को देख रहा हूं और इसमें पता नहीं कितना पानी बह गया है, हजारों ड्रम पानी बह गया है, लेकिन आपका तो एक रुआं भी गीला नहीं हुआ, बहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ा। तो कहीं ऐसा ही ना हो जाए, प्लीज बी केयरफुल, इसके लिए सतर्क रहिएगा। दोस्तों, ये जो अभी तक जो नोटबंदी के बारे में जो खबरें आई हैं, इसके बारे इसको देखते हुए मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है ऑप्शनल के रूप में, तो ये नोटबंदी में अभी तक आप देख रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इसका जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, या कह लीजिए कि इसकी जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, जिसे हम मैनेजमेंट कहेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक हिस्सा मैनेजमेंट है, तो मुझे यह लगता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, इसमें मैनेजमेंट को देखने की कोशिश करें, मैनेजमेंट के कुछ अगर वो सूत्र निकाल सकते हैं तो, भले ही सीधे इस पर क्वेश्चन न पूछा जाए, लेकिन इसके उदाहरणों से वो अपने जो अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसको बहुत एक नई चमक दे सकेंगे, उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा सकेंगे। ये मेरे एक विनम्र सलाह है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जो आपका फोर्थ पेपर होता है, यहां तक कि मैंने सेकेंड पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। एक बार समन्वय से संबंधित क्वेश्चन आया था सेकेंड पेपर में, जो आपका जनरल स्टडीज मेंस का सेकेंड पेपर होता है, कोऑर्डिनेशन पर। उसमें खासकर यही दिया था कि जो गांव में और शहरों में जो एक कोशिश की जा रही है डेवलपमेंट की, उसकी जो मूल समस्या है वो कोऑर्डिनेशन की समस्या है, कुछ इस तरीके का प्रश्न था। तो मित्रों, मुझे लगता है कि चूंकि कोऑर्डिनेशन पर प्रश्न आ चुका है, तो मैनेजमेंट पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई ताज्जुब नहीं है। तो यह सेकेंड पेपर में भी पूछा जा सकता है और यहां तक कि फोर्थ पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से एथिक्स, मॉरलिटी और ऑनेस्टी, ये सारी चीजें जुड़ी हुई ही है, निष्ठा, प्रोबेबिलिटी जिसको आप ईमानदारी कह लीजिए, ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये टॉपिक जो प्रबंध का टॉपिक है, मुझे एक साथ तीन जगह पर मौजूद दिखाई दे रहा है कि यहां ये घुसपैठ कर सकता है। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, दूसरा जनरल स्टडीज मेंस के सेकेंड पेपर में कर सकता है, और जनरल स्टडीज मेंस के फोर्थ पेपर में भी कर सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग इस बारे में सतर्कता बरतिएगा। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर मुझे आज लगी, और सच पूछे तो यही एकमात्र फिर महत्वपूर्ण खबर लग गई थी, वो ये था कि रुपया कमजोर हुआ है। और आपने न्यूज में सुना कि रुपया अभी तक 39 महीने 39 months, मतलब 3.25 साल में पहली बार इतना ज्यादा कमजोर हुआ है। और आपने सुना कि अब 68.73 रुपये का एक रुपया हो गया है। मुझे लगता है दोस्तों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये नोटबंदी की वजह से हुआ है या अमेरिका में ट्रंप जीत गए हैं इसकी वजह से हुआ है। वजह तो देखिए बहुत से होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है, मुद्रा में एक फैक्टर काम नहीं करती, जैसे शेयर बाजार में एक ही फैक्टर काम नहीं करता है। भारतीय शेयर बाजार भी देखिए कि जब मेरे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट याद कर सकते हैं कि जब हम लोगों ने क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी शेयर बाजार मार्केट के बारे में, तो उस समय मैंने 29,000 इंडेक्स के बारे में उनसे बात की थी कि अभी हमारा जो इंडेक्स है बीएसई है वो 29,000 है और कल रात में आपने न्यूज में सुना होगा कि वो 25,800 हो गया है। मतलब 29,000 रुपए की चीज मोटे तौर पर आप कहें तो 25,800 रुपए की चीज हो गई है। ये मोटा फार्मूला समझने की बात बता रहा हूं मैं, मतलब इतना शेयर बाजार डाउन हो चुका है। नो डाउट इसमें नोटबंदी जो डिमोनेटाइजेशन का रोल है इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो जब इस तरह से रुपया कमजोर होता है विदेशी मुद्रा के समानांतर या उसके बिल्कुल अपोजिट में, तो उसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अभी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। मैं ये तो समझ सकता हूं कि हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी। फिर भी मैं अपने दूसरे प्रिय श्रोताओं के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहूंगा कि मित्रों, वैसे देखने पर यह थोड़ा सा जटिल सा लगता है, ऊपरी तौर पर सुनने पर समझ में नहीं आता है, अखबारों में पढ़ने पर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन है ये बहुत सरल, बहुत ही सरल सिद्धांत है। और सरल सिद्धांत सच पूछे तो इसमें जो अप्लाई होता है वो अर्थशास्त्र का वह सिद्धांत अप्लाई होता है जो हम सब जानते हैं और लगातार उससे जूझते रहते हैं, और वह है मित्रों मांग और पूर्ति का सिद्धांत। अभी आप बाजार चले जाइए तो आपको गोभी 20 रुपए किलो मिल जाएगी, यही गोभी आप गर्मी के दिनों में खरीदने जाइए तो 80 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि गर्मी में गोभी कम हो गई है और अभी गोभी ज्यादा हो गई है, पूर्ति ज्यादा हो गई है उस समय पूर्ति कम हो जाती है। सिंपल सा मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। अब इस मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर अब आपको यहां इसे इस रूप में अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई अब अभी ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई। अब देखिए डॉलर मजबूत हुआ, इसका मतलब है कि डॉलर की मांग बढ़ी, राइट। रुपया कमजोर हुआ, इसका मतलब है कि रुपए की सप्लाई बढ़ी। सीधी सी बात है, जिसकी सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी कीमत गिर जाएगी। जैसे मैंने गोभी की बात कही तो गोभी की अभी सप्लाई बढ़ गई है तो कीमत गिर गई है, गोभी की जब सप्लाई कम हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर डॉलर मजबूत हुआ तो मतलब डॉलर की मांग बढ़ी, रुपया कमजोर हुआ इसका मतलब है कि रुपया की जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई, तो वो डिमांड बढ़ गई, यहां सप्लाई कम हो गई, ये सप्लाई बढ़ गई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। अब आप देखिए कि अब आपको केवल उन तथ्यों को पकड़ना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डॉलर के डिमांड को बढ़ा रही हैं। देखिए डिमांड बढ़ना भी एक होता है, सप्लाई का कम हो जाना भी एक होता है, क्योंकि सप्लाई कम अगर हो जाएगी तब भी उसकी स्केयरसिटी हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। तो आपको देखना यह होगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने डॉलर की डिमांड को बढ़ा दिया है, पहली बात। और फिर दूसरी तरफ आपको देखना होगा कि वे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने रुपया की सप्लाई को बढ़ा दिया है। बस अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को पकड़ लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों अब जब आपको यह पता लग जाएगा कि ऐसा इसलिए हुआ, तो अब आपका सेकेंड स्टेज आएगा कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब रुपया कमजोर हुआ है तो हमें सामान्य रूप में तो देखिए सुनने पर यही लगता है कि भाई हमारा रुपया कमजोर हो गया है तो नुकसान ही नुकसान होगा, है ना, क्योंकि कीमत गिर गई तो हमको यही लगता है कि भाई मेरे पास एक मकान है उसकी कीमत गिर गई तो यार उसकी कीमत कम हो गई तो मैं थोड़ा सा उतना तो गरीब हो गया ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि नुकसान ही होगा। ऐसा नहीं होता है, सरकार कभी कभी जानबूझकर भी अपने मुद्रा का अवमूल्यन करती है, मतलब मुद्रा की कीमत घटाती है। आपको इतिहास में भारतीय आजादी के बाद के इतिहास में ऐसे प्रसंग मिलेंगे जब जानबूझकर हमने अपनी मुद्रा की कीमत कम की है। उससे फायदे भी होते हैं और उससे नुकसान भी होते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में यह निर्णय ले रहे हैं। अगर हमारे निर्णय लेने से फर्क पड़ेगा तो, क्योंकि अभी तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, ये तो परिस्थितियां हैं जो डॉलर और रुपए की कीमत पर प्रभाव डाल रही हैं। अदरवाइज सरकार भी अपनी तरफ से निर्णय लेती है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक दायित्व तो बनता है, उसकी यह एक जिम्मेदारी होती है कि यदि उसे लग रहा है कि नहीं रुपया ज्यादा गिर रहा है तो वह हस्तक्षेप करे और उसे संभाले। उसके पास अपने तरीके हैं उसको संभालने के लिए, क्योंकि फिर ऐसे स्थिति में उसके पास रिजर्व होता है, उसके पास बहुत से डॉलर होते हैं, वो डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा, जब डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा तो रुपया संभल जाएगा। तो उसके पास अपने मैकेनिज्म हैं। तो मित्रों, अब आपको ये देखना होगा कि हम विदेश से जो भी सामान मंगाते हैं डॉलर में भुगतान करते हैं, राइट? और हम जब किसी को भी सामान भेजते हैं, विदेश में भेजते हैं, तो हम रुपया में भुगतान लेते हैं। भारत में तो रुपया चलेगा तो हम तो रुपया लेंगे, और विदेश में डॉलर चलेगा तो वो डॉलर लेंगे। तो हम डॉलर में देते हैं और रुपया में लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब ये बात बताकर मैं खत्म करूंगा और आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप सब खुद अप्लाई करें कि पहले एक डॉलर के बदले में, अब मैं एग्जैक्ट आंकड़े पर आ रहा हूं, है ना, मतलब बराबर के आंकड़े पर आ रहा हूं, एग्जैक्ट कीमत पे नहीं आ रहा हूं। मान लीजिए एक डॉलर के बदले में पहले मुझे 70 रुपए मिलते थे, 65 रुपए मिलते थे, चलिए हम 65 रख लेते, अब एक डॉलर के बदले में मुझे 70 रुपए मिलेंगे, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, पहले एक डॉलर लेने के लिए अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मुझे 65 रुपए देने पड़ते थे, अब यदि मुझे एक डॉलर लेना हुआ तो मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे। बस केवल अब आप इसको अप्लाई कर लीजिए मित्रों, और इसके बाद आयात निर्यात पर इसको लागू कर दीजिए, देखिए कि आपको सारा का सारा ये जो करिश्मा है ना, ये जो गणित और जटिलता है, ये जटिलता ही बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। तो मित्रों, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने इस पर आप लोगों से थोड़ी बात की है, आप जरा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। वक्त नहीं है कि मैं किसी क्लिपिंग्स को आधार बनाकर आपसे बात कर सकूं, कुछ क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उन क्लिपिंग्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो मित्रों, अब हम ईमेल की बात करेंगे। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं, शाहिद खान, रोशन जाट जयपुर से, सचिन कुमार सिंह दुर्ग छत्तीसगढ़ से, प्रीति बंसोड़ आप भी दुर्ग छत्तीसगढ़ से ही हैं, किरण कुमारी, सुरेश पटेल, रविन्द्र कुमरावत, कमल चौहान गुजरात से, चंचल सोनकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, यश सैनी दोसा राजस्थान से, चंदन सिंह, पवन कुमार, बबलू गोविंद वाले, सुमित कुमार सीतामढ़ी बिहार से, और तरुण कुमार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि बीच के ये दो दिन आपके बड़े सुखद हों, बड़े उपयोगी हों। तो मित्रों, सोमवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।